ఆవద్వైతం సావదూతం పరిజన సైతం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదా సహగణాది సాధాంశ నమో విష్ణు పాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నమస్తే సారస్వతి దేవే గౌరవాణి విచారిణి నిధి విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశ తారిణి హే కృష్ణ కరుణా సింధు దీనబంధు జగత్పతి హే గోపికా కాంత రాధా కాంత నమస్తే సప్త కాంచన గౌరాంగి రాధే వృందావనేశ్వరి దేశభాను సుతే దేవి ప్రణమామి హరితి నమో మహావదాన్యాయ కృష్ణ ప్రేమ కృతాయ కృష్ణాయ కృష్ణ చైతన్య నామిని గౌరవశ్రీ నమ వాంఛాకల్పతరూపస్య కృపా సింధుభ్యైవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత ప్రకాశ శివాచార్య గౌర భక్తవింద హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ. అభి తక్ చార్ శ్లోక సమాప్త కియే, చార్ శ్లోక సమాప్త హో చుకే హై, అభి హమ్ ఆగే పాంచవే శ్లోక కి చర్చా కరేంగే. లేకిన్ పాంచవే శ్లోక కా విషయ హై మధ్యమ అధికారులు వివిధ వైష్ణవ సేవన్. శ్లోక మే బతాయా గయా హై కి తీన్ ప్రకార్ కే భక్తో కే సాథ अर्थात कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, इनके साथ हमारा व्यवहार कैसा हो, इस श्लोक में पांचवें श्लोक में बताया गया है. हम इसको श्लोक का उच्चारण करेंगे. कृष्ण इति గిరిం మనసా ఆద్రియేత మిథ్యా అస్తి చేత ప్రణతి భజంతం ఈశం శుశ్రుషయా భజన విజ్ఞం అనన్యం अन्य निंदा आदि शून्य हृदय स्थित संग लब्ध्या कृष्णे प्रियस्य गिरितं मनसा द्रियेत कृष्णे प्रियस्य गिरितं मनसा द्रियेत మిథ్యాస్తి చేత ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం మిథ్యాస్తి చేత ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం. శుశ్రుషయా భజన విక్రమనన్యమన్య శుశ్రూషయా భజన విక్రమనన్యమన్య నిందాది శూన్యహిదమిశ్రిత సంగలభ్యా నిందాది శూన్యహిదమిశ్రిత సంగలభ్యా కృష్ణే ప్రియస్య గిరితం మనసా ద్రియేత దిచ్ఛస్తి చేత ప్రణతిభిశ్చ భజంతమీశం శుశ్రూషయా భజన విక్రమనన్యమన్య నిందాది శూన్యహిదమిశ్రిత సంగలభ్యా. శ్లోక కా ఛంద హై బసంత తిలక్. ఠీక్ హై, పఢియే ఉచ్చారణ. నహీ నహీ, శ్లోక పఢియే.
కృష్ణే ప్రియస్య గిరితం
Krishna diyasadiritam manasadriyekaram Vishnastite tapanate vishnabhajantamisham Sutru saya bhajana vikyam ananya manya Nindadi sunya hita mishita sangalabhya Krishne kiyasya jiritam manasandriyetam Ikshantiteta prantivishya bhajantamitam Uttu saya bhajana vikyam ananya manya Nindadi sunna hida vipita sangalabhya Krishne tiyasya giritam manasadriyeta Vishasiteta pranasidhishya bhajantamitam Sutru saya bhajana vikyam ananya manya Nindadi sunya hida vipita sangalabhya Krishne tiyasya giritam manasadriyeta
Dikshasiteta
pranatibhishya bhajantamisham
Sushrushya
bhajana vikyam ananya manya
Nindadi
sunya hida mipsita sangalabhya Krishne tiyasya giritam manasadriyeta Vishasiteta pranatibhishya bhajantamisham Sutru saya bhajana vikyam ananya manya Krishne tiyasya giritam manasadriyeta Vishasiteta pranatibhishya bhajantamisham Sutru saya bhajana vikyam ananya manya Nindadi sunya hida mipsita sangalabhya
यह शब्दार्थ इस प्रकार से कृष्णा भगवान कृष्ण का पवित्र नाम इति इस प्रकार यस्य जिसके गिरे शब्दों या वाणी में तब उसको मनसा मन से आद्रियेत आदर करना चाहिए दिच्छा दिच्छा अस्ते है चेत यदि प्रणतिभि प्रणाम के द्वारा च भी भजन्तम अक्षि में लगा हुआ ईशम भगवान की शुश्रूषया व्यवहारिक सेवा द्वारा भजन अधिक्यम भक्ति में आगे बढ़े हुए अनन्यम अविचल अन्य निंदा आदि अन्यों की निंदा इत्यादि से शून्य विहीन हृदय जिसका हृदय इच्छित संग संगति लब्ध्या प्राप्त करके अनुवाद भिजवाएंगे ऐसी भक्ति स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद इस प्रकार से है। मनुष्य को चाहिए कि जो भक्त कृष्ण नाम का जप करता है उसका मन से आदर करे, उसे चाहिए कि वह उस भक्त को सादर नमस्कार करे जिसने आध्यात्मिक दीक्षा ग्रहण कर ली है और अर्चा विग्रह के पूजन में लगा हुआ है, एवं उसे चाहिए कि वह उस शुद्ध भक्त की संगत करे और श्रद्धा पूर्वक सेवा करे जो अनन्य भक्ति में आगे बढ़ा हुआ है और जिसका हृदय दूसरों की आलोचना अर्थात निंदा करने की प्रवृत्ति से सर्वथा विमुख है। तो यहाँ पे पांचवें श्लोक में यह बताया गया कि तीन प्रकार के भक्तों अर्थात कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के साथ हमारा व्यवहार किस प्रकार से होना चाहिए। प्रभुपाद जी बताते हैं कि कम से कम इतना भक्त को तो बुद्धिमान तो रहना चाहिए, इन दो गोस्वामी की शिक्षाओं को प्राप्त करके कम से कम इतना तो बुद्धि प्राप्त कर लेना चाहिए कि वह कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी में अंतर या भेद को जान सके। इतना तो कम से कम बुद्धिमान हर भक्तों को रहना चाहिए कि कौन कनिष्ठ अधिकारी है, कौन मध्यम अधिकारी है और कौन उत्तम अधिकारी है, क्या क्या अंतर होते हैं, इनका किस तरह से व्यवहार होता है, इनका आचरण किस प्रकार से होता है, इसको हर भक्तों को जानना चाहिए। हम सीखेंगे कि किस प्रकार से हम व्यवहार करें, आगे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताएंगे किस प्रकार से कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी के विषय में। तो ठीक है, तात्पर्य पढ़िए। हाँ, उनकी क्या पढ़े पढ़े उनकी क्या आपके बुक में प्रतिष्ठा नहीं, उसको कट करिए, पद लिखिए, प्रतिष्ठा को कट करिए, प्रतिष्ठा एक गलत अनुवाद कर दी, ट्रांसलेट इंग्लिश नया बुक्स में शायद सुधार होगा। प्रतिष्ठा ये भक्तों के लिए अच्छा लागू नहीं होता है, मान प्रतिष्ठा सुखने निष्ठा भक्ति सिद्धांत से ठाकुर बताते हैं। तो प्रतिष्ठा को कट करिए, जो उसके पास पुराना भगव उसको पद लिखिए। हाँ पढ़िए। हाँ ठीक है, तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उस चार्ट पे अभी तक की चर्चा सार के रूप में है। पांचवें श्लोक का विषय क्या है, मध्यम अधिकारी त्रिविध वैष्णव सेवन, एक मध्यम अधिकारी किस प्रकार तीन प्रकार के वैष्णव की सेवा करता है। तो त्रिविध वैष्णव कौन कौन है, कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। सबको बताया ना कि तीन प्रकार के अधिकारी होते हैं, तो इसको अच्छा से पढ़ लीजिए क्योंकि एग्जाम में भी आ सकते हैं कि कनिष्ठ अधिकारी के बारे में लिखिए, उत्तम मध्यम अधिकारी कौन उसके बारे में लिखिए, उसका क्या लक्षण होते हैं, क्या व्यवहार होते हैं और उत्तम अधिकारी का क्या व्यवहार, क्या लक्षण, क्या आचरण होता है, सब आ सकते हैं एग्जाम में। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है कि हम इन तीन प्रश्नों को हमें कम से कम देख परख लेना चाहिए, इनका क्या पद है भक्ति मार्ग में या कैसा आचरण है, और तीनों में भेद, जब हम ये भेद को जानेंगे कि ये तीनों में भेद है, इस भेद को जानेंगे तभी हम उनके साथ उस प्रकार का व्यवहार करेंगे, नहीं तो हम कनिष्ठ अधिकारी को के प्रति भी अपराध कर सकते हैं, मध्यम अधिकारी का भी प्रति अपराध कर सकते हैं अगर उनको नहीं जानेंगे तो, और उत्तम अधिकारी का भी अपराध कर बैठेंगे अगर नहीं जानेंगे कि उत्तम अधिकारी कौन होता है, क्या उनके क्या लक्षण होते हैं। तो त्रिविध वैष्णव कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। अभी तक हमने जो कहा है उसका सार यहाँ पे, छह प्रकार के प्रीति के आदान प्रदानों को व्यवहार में लाने के लिए विवेक पूर्वक उचित व्यक्तियों का चुनाव करना चाहिए। इसके साथ एक छह प्रकार का जो प्रेम हमने इसके पहले श्लोक में पढ़ा सर, पदाति प्रति घृणाति गुह्यम आख्यादि प्रति भूमते भोजते सेवा सर्विदम प्रीति लक्षण, जो श्लोक हमने पीछे चर्चा किए। तो हमको इतना विवेक होना चाहिए कि किस प्रकार से उनके साथ, किस व्यक्तियों के साथ हमें प्रीति का आदान प्रदान करना चाहिए और क्यों चुनाव करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वैष्णव अलग अलग पद पर स्थित होते हैं और उनके विशेष पद के अनुसार हमें उनसे उचित रीति से मिलना चाहिए, अर्थात हमें हर वैष्णव के साथ एक तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए, बुद्धिमत्ता पूर्वक भेद करना आवश्यक है। कौन वैष्णव किस पद पे स्थित है, वो कनिष्ठ है, मध्यम है या उत्तम है, ये हमें जानना चाहिए। और इस पांचवें श्लोक में यह बताया गया है कि तीन प्रकार के भक्तों के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस बार अभी तक का ठीक है। तो थोड़ा से हम श्लोक को खोले उस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। श्लोक का पहला शब्द क्या है, कृष्णेति यश्च गीरितम मनस्ताद्री एक, इसमें कनिष्ठ अधिकारी के लक्षण और उसके साथ कैसे व्यवहार करना है ये पहले लाइन में बताया गया। जैसे कृष्णेति यश्च गीरितम मनस्ताद्री एक, जो भगवान कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है या नाम को लेता है उसे क्या करना चाहिए, मनस्ताद्री एक, उसे मन से आदर देना चाहिए, जो कि कनिष्ठ अधिकारी है। जो पहला लाइन है कनिष्ठ अधिकारी का लक्षण और उसका उसको किस तरह से हमें आदर करना चाहिए कनिष्ठ अधिकारी को, उसके बारे में बताया गया है। इसका और अधिक हम जानकारी आगे के तात्पर्य में पढ़ेंगे कनिष्ठ अधिकारी के बारे में, जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम देखेंगे। तो कृष्ण थे जो कि कृष्ण के नामों का उच्चारण करने लगा उसको कम से कम मन साद्रिय का मन से आदर करना चाहिए भक्त को, मतलब अर्थात उसको प्रणाम और दंडवत करने की जरूरत नहीं है, उसे केवल मन से आदर, मन में कम से कम प्रणाम करना चाहिए, मन से आदर देना चाहिए बस, और सामने उसको दंडवत डालने की कोई जरूरत नहीं है, प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हो गया कनिष्ठ अधिकारी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, उसको मन शास्त्रीय था मन से आदर करना चाहिए। और दूसरे में मध्यम अधिकारी के लक्षण और उसके साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए वो दूसरे लाइन में बनाना, दिच्छास्त चेत प्रण से भीष्ट भजन का, जिन्होंने दीक्षा को ग्रहण कर लिया है, जिन्होंने गुरु को स्वीकार किया है, उनसे दीक्षा ग्रहण कर ली है, उनके साथ दीक्षा से प्रणति भीष्ट आदर प्रणाम करना चाहिए उनको, जिन्होंने गुरु को स्वीकार किया और दीक्षा ग्रहण कर लिया उनसे, अर्थात कृष्ण नाम में उनका दृढ़ता रुचि बढ़ने लगा है या गुरु को स्वीकार कर लिया, उनको दीक्षा ग्रहण कर लिया, उनको प्रणति भीष्ट उनको प्रणाम करना चाहिए, अर्थात दंडवत डालना चाहिए। ये मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए। उसके बाद तीसरे और चौथे लाइन में इसमें उत्तम अधिकारी के लक्षणों को बताया गया है कि उत्तम अधिकारी के साथ हमारा क्या व्यवहार होना चाहिए। तो क्या है तीसरा और चौथा, शुश्रूषया भजन भिक्ष मनन्य मन्य निंदा विशून्य हित निश्चित अंग लब्ध्या, यहाँ बताया गया कि एक उत्तम अधिकारी के साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो दो प्रकार के व्यवहारों का यहाँ पे वर्णन हुआ है कि उनके साथ दो प्रकार से व्यवहार हमको करना चाहिए। पहला क्या बताया गया, संग लब्ध्या, अंतिम वर्ड क्या है, संग लब्ध्या, उनका उनकी संगति करना चाहिए, उत्तम अधिकारी जो है उनकी संगति करना चाहिए। और उसके बाद शुश्रूषया, श्रद्धापूर्वक उनको सुनना चाहिए और उनकी सेवा करना चाहिए उत्तम अधिकारी का। तो हो गया क्लियर, कनिष्ठ अधिकारी के साथ हमारा कैसा व्यवहार होना चाहिए, मन साथ रहिए था मन से उसको आदर देना चाहिए, और मध्यम अधिकारी के साथ प्रणति भीष्ट आदर प्रणाम करना चाहिए उनको, और उत्तम अधिकारी के साथ उनका संग लेना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। ये तीनों प्रश्नों के साथ, तीनों अधिकारियों के साथ कैसे हमारा व्यवहार होना चाहिए। तो ठीक है, तो अभी थोड़ा सा इसको घुमाइए और उसको निकाल दीजिए, हो गया। और घुमाइए, हाँ हाँ, इसको उसको फाड़ के ऐसा लगा दीजिए फिर। जो भी हमने चर्चा किया था, हाँ फाड़ दीजिए, इसको लगा दीजिए। ठीक है, तीनों समझ गया है। तीन प्रकार के वैष्णवों के साथ हमें किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, कनिष्ठ अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए कोई बताए, मन से आदर करना चाहिए उनको, और मध्यम अधिकारी के साथ सादर प्रणाम करना चाहिए, और उत्तम अधिकारी के साथ हाँ उनकी सेवा और उनका संगति करना चाहिए। क्लियर है नहीं तो? कनिष्ठ अधिकारी को हमको प्रणाम नहीं करना चाहिए उनको, मन से आदर रहता, मन से आदर करना चाहिए उसको, देश नहीं करना है, मन से उसको आदर देना। जो अभी जस्ट अभी भक्ति मार्ग में शुरुआत आया है, उसने अभी जस्ट हरिनाम को कोई भक्त बताया, उसको अभी शुरू ही किया है, अभी उसको और क्या विधि विधान उसके बारे में नहीं मालूम आगे के, अभी शुरुआत ही किया है। तो उस भक्त को यहाँ पे ये वर्णन है इस श्लोक में कि हमारा इन तीन प्रकार के अधिकारियों के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। हमारा ये रूप गोस्वामी साहब ने जो शिक्षा दिया है वो सब हमारे लिए है, सबको यही सोचना चाहिए कि हमारे लिए है, जितनी भी शिक्षा उन्होंने दिया अपने लिए, हम हर भक्त को ये सोचना चाहिए कि हमारे लिए शिक्षा दिया है। तो इस प्रकार से हमारा व्यवहार उनके कनिष्ठ अधिकारी है, कनिष्ठ अधिकारी तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए यहाँ पे वर्णन है। तो हमारा व्यवहार यह होना चाहिए कि उसको मन से आदर देना चाहिए, मन शास्त्री ऐसा। तो जो हमने चर्चा किया उसके सार के रूप में त्रिविध वैष्णव सेवा, तीन प्रकार या तीनों अधिकारियों के साथ व्यवहार या सेवा किस प्रकार से हमारा होना चाहिए। क्या जो पहला पहला श्लोक का पहला शब्द कृष्णेति यस्य गिरितम् मन शास्त्रीयः, ये है कनिष्ठ अधिकारी के साथ व्यवहार क्या होना चाहिए, मन शास्त्री एता, मन से उसको आदर करना चाहिए या मन में प्रणाम करना चाहिए। नहीं जरूरत है तो मन से, हाँ वो तो कहने का तात्पर्य है कि उसको प्रणाम दंडवत प्रणाम नहीं करना है। नहीं हमको भी करना, हरे कृष्ण तो बोलना ही है, उनको खाने का तात्पर्य है कि उनको प्रणाम या दंडवत प्रणाम उनको नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं सामने से अगर दंडवत करता है तो हमको भी करना चाहिए ना। ये अभी क्या हमने सोचा कि हमारा किस प्रकार उसके साथ व्यवहार होना चाहिए, अगर वो सामने से दंडवत करता तो हमको भी करना चाहिए। और प्रभुपाद जी बता रहे कि हर भक्त को अपनी भी स्थिति जानना चाहिए कि हमारी स्थिति क्या है। अभी एक उत्तम अधिकारी को कोई कनिष्ठ अधिकारी अगर या मध्यम अधिकारी दंडवत प्रणाम करता है तो उत्तम अधिकारी को प्रणाम करने की कोई जरूरत नहीं। तो प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि हर भक्त को अपनी स्थिति क्या है वो भी जानना चाहिए, हमेशा परखना चाहिए कि हम किस स्तर पर पहुंचे भक्ति के। तो कनिष्ठ अधिकारी जो नए नए आए कभी तो उनको प्रणाम करते तो उनको प्रणाम को स्वीकार करना चाहिए अपनी स्थिति के अनुसार। या तो हम नए हैं फिर कोई भक्त आया थोड़े दिन के बाद आया कोई भक्त तो प्रणाम करता तो हम भी प्रणाम कर सकते हैं, क्योंकि हर हमें हमेशा अपने आप को कनिष्ठ समझना चाहिए, उस हिसाब से अपने स्तर को जानकर प्रणाम करना चाहिए। अगर हमारी स्थिति कुछ बहुत दिनों से हम भक्ति में उठी उठी हमारी स्थिति तो कभी कभी स्वीकार भी करते हैं, भक्त लोग स्वीकार करते हैं ना, जैसे कोई सन्यासी आते महाराज आते कोई सीनियर वैष्णव आते तो उनको बहुत लोग प्रणाम करते हैं, तो स्वीकार करते हैं, वो दंडवत नहीं डालते हैं। हाँ बोलिए, हाँ सही बात है, अच्छा ये सन्यासी लोगों के लिए उपदेश, जो कि भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर बताए हैं कि अगर सन्यासी दंडवत नहीं करता है तो उनको तीन दिन प्रसाद नहीं। तो ये सन्यासी चैतन्य महाप्रभु ने क्या सिखाया कि किस तरह से एक वैराग्यों को रहना चाहिए, वैराग्यों को विशेष करके बहुत कड़क उपदेश, बहुत कड़क नियम है वैराग्यों के लिए, जिन्होंने वैराग वेशभूषा या वैराग को धारण किया है उनके लिए बहुत ही कड़क उपदेश रहते हैं। तो सब परिस्थितियों में पालन करना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी जितना हो सके उतना पालन करना चाहिए। और ये तो सन्यासियों का असर, हम उससे नहीं जाकर बता सकते हैं कि हाँ सन्यासी लोगों को दंडवत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो उनकी स्थिति है। इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि हर भक्तों को अपनी स्थिति जानना चाहिए, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। तो उनके असर का वो उत्तम अधिकारी हैं, उस अपने असर से अपने हिसाब से वो जो कर रहे हैं वो करेंगे, क्योंकि हमें क्यों नहीं कर रहा है, हमें इस प्रकार से नहीं सोचना चाहिए, ये एक अपराध है। ठीक है, और आगे क्या है, और मध्यम अधिकारी के विषय में क्या है, दूसरा लाइन जो है मध्यम अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, प्रणति भी आदर नमस्कार करना चाहिए। और उत्तम अधिकारी वही सेम केवल और उत्तम अधिकारी के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शुश्रूषया जन विज्ञ मनन्य मन्य, क्योंकि उत्तम अधिकारी क्यों उसके साथ क्यों ऐसा व्यवहार, क्योंकि वो निंदा आदि से शून्य है, वो किसी के निंदा ग्रहण नहीं करता है। उत्तम अधिकारी है किसी भी भक्त की निंदा नहीं करता है, बल्कि अगर कोई व्यक्ति कोई भक्त या कोई भी मनुष्य कोई भी जीव अगर गलत कार्य करता है तो उसके उसके प्रति करुणा होती है कि किस प्रकार से इसको भक्त बनाए, इसका उद्धार किस प्रकार से हो, उसकी निंदा नहीं कर। लेकिन हमारी स्थिति क्या है, हम देखते कोई क्या भक्त होके भी ऐसा कर रहा है, निंदा की भावना नहीं होती, निंदा करने लगते हैं, लेकिन निंदा नहीं करना चाहिए हमें किसी भी परिस्थिति में, क्योंकि उसको अपने कर्मों के अनुसार वो ऐसा भुगत रहा है। तो उत्तम अधिकारी निंदा आदि से सुने इसलिए उनकी संग करना चाहिए और उनका श्रद्धापूर्वक सेवा करना चाहिए। तो हो गया क्लियर एकदम, ठीक है अभी आगे बढ़िए। और कुछ है आगे बढ़िए, ठीक है अभी तक जो पढ़ा आपने वो पाठ में हो गया, ठीक है आगे बढ़िए।
अधिकारी ही नहीं बना रहे जो सदैव भक्ति के निरंतर अवसर पर रहता है और केवल मंदिर के आशा विग्रह पूजा करने में रुचि करता है, वैसे भक्त का मानो श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में इस प्रकार है, अध्यायामेव हरे पूजामेव श्रद्धाये हते न भक्त न भक्ति सुजाने स भक्त प्राप्त करता, जो व्यक्ति मंदिर में रहता है वह पूजा में नहीं करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि भक्तों या समाज के लोगों को किस तरह व्यवहार किया जाए और चाहिए भक्त या कहीं सरकारी कराता है, अगर मनुष्य को कहीं सरकारी पद के
ठीक है ठीक है। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं इस परिस्थिति में कि मनुष्य को चाहिए कि वह कनिष्ठ अधिकारी ही न बना रहे, उसे भक्ति के निम्नतर स्तर पर, जो कि भक्ति के निम्नतर स्तर पर रखा है, जो कि कनिष्ठ अधिकारी नहीं बने उसको मध्यम अधिकारी की तरफ बढ़ना चाहिए। और कैसे बढ़ेंगे, जिस तरह से हम अपनी साधना करेंगे और नियमों का पालन करेंगे, अच्छी तरह से जप करेंगे, तो हम धीरे धीरे इस अधिकारी शब्द, अधिकारी मतलब क्या है, क्योंकि तीनों भक्त हैं, कनिष्ठ उत्तम तीनों भक्त हैं, लेकिन अधिकारी तीनों में क्यों लगा है, नहीं अधिकारी शब्द का अर्थ है कि जिसका अधिकार है, किसमें अधिकार है? भक्ति, भक्ति करने के लिए उसका अधिकार है, भक्ति करने के लिए उसका अधिकार है। और ये अधिकार हाँ, भक्ति को कार्य क्या, भक्ति करने लगा तो अधिकारी हो गया। भक्ति करने के लिए उसका, हर मनुष्य भक्ति करने के लिए अधिकार है, समझ गया ना, भक्ति करने का उसका अधिकार, इसको उसको अधिकारी बोला गया है, उसका भक्ति करने के लिए उसका अधिकार है। और तो ये विभाजन क्यों हुआ है, विभाजन किस लिए हुआ है? अधिकार तो है सब लोग का, लेकिन विभाजन किस लिए हुआ है? ये विभाजन श्रद्धा के अनुसार हुआ है कि किसकी कितनी श्रद्धा है। तीन प्रकार के वैष्णव है, इनकी श्रद्धा अलग अलग है। कनिष्ठ अधिकारी की श्रद्धा उतना विकसित नहीं है जितना मध्यम अधिकारी का है, और मध्यम अधिकारी की श्रद्धा उतनी विकसित नहीं जितना उत्तम अधिकारी का है। तो श्रद्धा के अनुसार ये विभाजन हुआ है, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम, समझ गया? श्रद्धा के अनुसार किसका कितना श्रद्धा है, कनिष्ठ अधिकारी का कितना श्रद्धा है उसके अनुसार उसको कनिष्ठ अधिकारी बोला गया, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। तो श्रद्धा के अनुसार ये विभाजन हुआ है तीनों का। हाँ ठीक है, अभी हम आगे देखेंगे, जब चार्ट देखेंगे तो त्रिविध वैष्णव के लक्षण क्या क्या है, लक्षण क्या क्या वो देखेंगे हम। तो अधिकारी भी उसको भी दीक्षा प्राप्त रहता है, दीक्षा गुरु से दीक्षा लिया रहता है, लेकिन उतना प्रगति नहीं रहता होता, उसकी इतनी श्रद्धा को नहीं रहता। उसकी श्रद्धा क्या होती है, कोमल श्रद्धा होती है। जैसे कि अभी वैसे तो पूरे तात्पर्य में लास्ट तक प्रभुपाद जी कनिष्ठ मध्यम और उत्तम के बारे में बताते हैं, तो जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे इसमें आप लोग गाइड कर लीजिएगा, अलग से लिखिएगा। तो त्रिविध वैष्णव के लक्षण, उनके लक्षण क्या क्या है। जैसे कनिष्ठ अधिकारी, जो कनिष्ठ अधिकारी है उसके क्या लक्षण है, थोड़ी नौसिखिया भक्त, नौसिखिया भक्त अभी नया नया अभी सीख रहा है, नौसिखिया भक्त जिसको बोलते हैं। और उसके और क्या लक्षण है, हरिनाम, उसको दीक्षा दीक्षित है, हरिनाम मिला हुआ है, हरिनाम दीक्षा हो गया है उसका। आगे अर्चा विग्रह की सेवा में भी युक्त है, लेकिन भक्तों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको अभी नहीं मालूम है, जो कनिष्ठ अधिकारी है। और आगे उसकी श्रद्धा जो होती है कोमल, कोमल श्रद्धा होती है, अनवधिष्ठित होता है कोमल श्रद्धा। और वह क्रमशः उत्तम अधिकारी की पद की ओर उठता है, और कैसे उठता है, हरिनाम को लेकर। वो आगे है, अभी तक हमने इसको नहीं पढ़ा, लेकिन हमने लिख दिया उसको कनिष्ठ अधिकारी में। आगे प्रभुपाद जी इसका वर्णन करते हैं श्लोकों के द्वारा, चैतन्य चैतन्य हम इसमें कोट करते हैं। और कनिष्ठ अधिकारी के जैसे कि यहाँ पे प्रभुपाद जी श्रीमद भागवतम के 11वें स्कंध के से श्लोक भी कोट करते हैं, अर्चायामेव हरे पूजाम यत् तदीयते न तद्भक्तेषु चान्येषु स भक्तः प्राप्तस्मित। कि जो व्यक्ति मंदिर में अर्चा विग्रह की पूजा में लीन रहता है, लेकिन यह नहीं जानता कि भक्तों के साथ कैसा सामान व्यवहार होना चाहिए भक्तों के साथ, यह नहीं जानता है, वह कनिष्ठ अधिकारी कहलाता है। और मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी के विषय में क्या है, उस गुरु द्वारा दीक्षा प्राप्त किया हुआ है, और गुरु द्वारा पूरी तरह से भगवान की सेवा में युक्त है, गुरु द्वारा बताए गए निर्देशों में वो भगवान की सेवा में युक्त है, और भक्ति मार्ग के मध्य में स्थित है, इसलिए उसको मध्यम अधिकारी कहते हैं। और चारों वर्गों के प्रति अलग अलग व्यवहार है, और शोभा जी और आगे इसको समझाएंगे। तो चार वर्ग क्या क्या है, चार वर्गों के प्रति अलग अलग उसका व्यवहार होता है मध्यम अधिकारी के। जैसे कि एक कनिष्ठ अधिकारी जो एक चार वर्गों के प्रति वो व्यवहार नहीं जानता किसके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, लेकिन मध्यम अधिकारी ये चार वर्गों के प्रति, कौन कौन सा चार वर्ग, भगवान, और भक्तों और अज्ञानी और जो द्वेष करते हैं, ये चार वर्ग, भगवान, भक्त, जो अज्ञानी हैं और जो द्वेषी हैं, उनके साथ मध्यम अधिकारी का अलग अलग व्यवहार होता है। भगवान के साथ अलग व्यवहार, भक्तों के साथ अलग व्यवहार, और जो अज्ञानी है, जो नहीं जानते कि भक्ति मार्ग क्या है, भक्ति के विषय में नहीं है, इनको ज्ञान नहीं है, उनके उनके साथ भी अलग व्यवहार करता है वो, और जो द्वेषी है उनके साथ भी अलग व्यवहार है। इन चार वर्गों के प्रति मध्यम अधिकारी का अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन कनिष्ठ अधिकारी इन चार वर्गों के प्रति कैसा व्यवहार करना चाहिए उसको नहीं मानता। हाँ, अर्चा मित्र की सेवा में युक्त है, लेकिन अभी उसको व्यवहार कैसे करना है वो अभी नहीं जानता। और उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण है? भक्ति में बहुत आगे बढ़ा हुआ है, जैसे प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, महाभागवत, भागवतम बताया गया, महाभागवत के लक्षण क्या क्या है, तो इसको महाभागवत बोलते हैं। और दूसरा, निंदा में रुचि, बिल्कुल रुचि नहीं रखते, निंदा विसन्न, ये तो निश्चित है। निंदा आदि सुनने श्लोक का अंतिम जो लाइन है, निंदा उसने निंदा और स्वर करने का बिल्कुल विचार नहीं रहता, उसके अंदर एकदम शुद्ध रहता है उत्तम अधिकारी। और उत्तम अधिकारी का और क्या लक्षण है? अनन्य कृष्ण भावनान्वित अवस्था की अनुभूति करते हैं, जो उच्च चरम अवस्था है कृष्ण भावनान्वित की, उसका उसको अनुभूति, उसका रस को प्राप्त करते हैं उत्तम अधिकारी। तो क्या समझ गया त्रिविध वैष्णव, उनके क्या क्या लक्षण होते हैं त्रिविध वैष्णव का, और भी इसकी अधिक व्याख्या प्रभुपाद जी आगे के तात्पर्य में हमें बताएंगे। तो ठीक है, अभी आगे पढ़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। अभी तक हमने
शिष्य के रूप में ग्रहण करते हैं। यदि कोई नया भक्त वास्तव में दीक्षित होता है
और अपने गुरु के आदेश से भक्तिमय सेवा में लगा होता है तो उसे तुरंत ही प्रामाणिक वैष्णव के रूप में स्वीकार करके नमस्कार करना चाहिए। ऐसा नहीं वैष्णवों में से कोई एक ऐसा होगा जो भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न रहकर समस्त विधि विधानों का पालन करता है, जब माला का नियत संख्या में जप करता है तथा सदैव कृष्ण भावामृत आंदोलन का विस्तार करने के विषय में विचार करता रहता है। ऐसे वैष्णव को उत्तम अधिकारी के रूप में स्वीकार करना चाहिए और संगति करनी चाहिए।
ठीक है, पुनः शिक्षक इन दो परिच्छेदों में कनिष्ठ मध्यम और उत्तम अधिकारी के विषय में चर्चा करते हैं। तो थोड़ा घुमाइए, मध्यम अधिकारी के व्यवहार है जो अभी श्लोक हमने पढ़ा ना, ईश्वरे तद तद दीनेशु बालिशेशु तिशस्सु च प्रेम मैत्री कृतोच्चा यह करो च मध्यम। ये मध्यम अधिकारी के लक्षण यहाँ पे बताया गया कि किस प्रकार से वह चार वर्गों के प्रति व्यवहार करता है, जो श्लोक है इसमें। तो मध्यम अधिकारी का व्यवहार कैसा होता है, लोगों के प्रति कैसा व्यवहार होता है? पहला क्या है, भगवान के साथ जो कि शब्द जो ईश्वर लिखा है, मतलब वो श्लोक शब्द श्लोक का जो हमने एक वर्ड लिखा है वहां पे भगवान के साथ क्या करता है, प्रेम करता है। वो चार वर्गों, अभी हमने चर्चा किया ना कि मध्यम अधिकारी किस प्रकार से चार वर्गों के प्रति अलग अलग व्यवहार उसका होता है। तो इस भगवान के साथ प्रेम का व्यवहार रहता है और वैष्णव के साथ ध्यानेशु, वैष्णव के साथ कैसा व्यवहार रहता है, वैष्णव या भक्तों के साथ मैत्री का व्यवहार रहता है। और उसके बाद बालिशेषु जो अज्ञानी है और मासूम, उनका करुणा, जो अज्ञानी है जो नहीं जानते और भक्ति मार्ग के विषय में या भौतिक कार्यों में लगे हुए हैं, भौतिक चीजों के प्रति आसक्त हैं, जो अज्ञानी है उनके प्रति करुणा भी दृश्य करते हैं, किस प्रकार से वो भी उनको भी भक्ति मार्ग में लाएं। तो जो भी हमारे सदा जो भी प्रचार करते हैं वो मध्यम अधिकारी के बारे में करते हैं, क्योंकि वो प्रचार करके लोगों को कृष्ण भक्ति में जोड़ते हैं ज्यादा से ज्यादा। तो उनके ऊपर करुणा की भावना रहती है मध्यम अधिकारी का। और दिशस्थ देशी लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, हाँ उपेक्षा, उनसे देशी लोगों से जो कृष्ण देशी भक्तों से द्वेष करते हैं वो मध्यम अधिकारी उनसे दूर रहता है। ठीक है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे कि दीक्षा के बारे में वर्णन करते आगे प्रभुपाद जी, जो कि बहुत ही गंभीर विषय है दीक्षा। इसको बहुत साधारण नहीं समझना चाहिए, कि हमें इस प्रकार से सोचना चाहिए दीक्षा लेने से पहले कि दीक्षा के लिए क्या क्या योग्यताएं हमारी होनी चाहिए, ये सब हमको ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि दीक्षा बहुत ही गंभीर विषय है भक्तों के लिए, कि हमें दीक्षा कब ग्रहण करना चाहिए, हमारी स्थिति क्या होनी क्या रहनी चाहिए दीक्षा ग्रहण करने के लिए, क्या हम योग्य हैं गुरु स्वीकार करने के लिए, हमारी मनोवृत्ति उस प्रकार की हुई कि नहीं दीक्षा ग्रहण करने के लिए, विचार करना चाहिए इसे। तो जो कि बहुत ही गंभीर विषय है और आगे बढ़िए इसे आगे। दीक्षा के बारे में वर्णन करते हैं, तो भाई दीक्षा क्या है, दीक्षा के समय भक्त का क्या मनोभावना रहता है, तो यह वर्णन करते चैतन्य चैतन्य श्लोक कोट करते हैं प्रभुपाद जी कि दीक्षा काले भक्ति करे आत्मसमर्पण। दीक्षा के समय भक्त आत्मसमर्पण कर देता है, किसे, कृष्ण के प्रति पूर्णतः समर्पित हो जाता है। और काले कृष्ण कार्य परे आत्मसत, तो कृष्ण उसे अपने ही समान मान लेते हैं जब वो आत्मसमर्पण करता है तो। और दीक्षा है जो कि बहुत ही लंबी विषय, बहुत ही गंभीर विषय है दीक्षा। जब हम दीक्षा को ग्रहण करते हैं तो हम गुरु परंपरा में जुड़ जाते हैं, हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है या जो कुछ गुरु परंपरा में हो जाते हैं तो फिर हमको उस परंपरा द्वारा जो ज्ञान आता है वो हमको प्रसुप्त ज्ञान प्राप्त होता है, हम परंपरा में आ जाते हैं, गुरु परंपरा में जुड़ जाते हैं। और दीक्षा की व्याख्या और करते हुए श्री प्रभुपाद जीव गोस्वामी द्वारा जो भक्ति संदर्भ है उससे श्लोक कोट करते हैं कि दीक्षम ज्ञानम यतो तद्यात् कुर्यात् पापस्य संशयम्। कि दीक्षा के द्वारा जब दीक्षा होता है भक्त का, मनुष्य का दीक्षा होता है तो उसके भौतिक भोग जो होते हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं, क्रमशः नष्ट होने लगते हैं, पाप जो होते हैं संशयम पाप नष्ट होने लगते हैं। और देश को भी दे, और आध्यात्मिक भौतिक भोग कम होने लगते हैं, पाप धीरे धीरे क्रमशः नष्ट होने लगते हैं और आध्यात्मिक जीवन के प्रति उसकी रुचि उत्पन्न होती है। आध्यात्मिक जीवन अर्थात जब हमारे कर्मस नष्ट हो रहे हैं या भौतिक भोग की इच्छा खत्म हो रही है, कैसे हम जान सकते हैं कि हमारा जप कितना अच्छा हो रहा है, कितना अच्छा से हम जप कर रहे हैं, उसको श्रवण कितना अच्छा से कर रहे हैं, कितना जप कर रहे हैं, कितना मन लग रहा है हमारा, ये हमारा ये परीक्षा है हमारे। हम इतने दिन से भक्ति कर रहे हैं, हमारे अंदर हमारे पाप नष्ट हो रहे हैं, भोग की भावना जा रही है, ये कैसे पता करेंगे? ये परीक्षा है कि हम एक ही चीज से पता कर सकते हैं कि हम जब जप कर हमारा कितना मन लगता है जप में, और कितना शुद्ध तरह से उच्चारण करते हैं और उसको कितना अच्छी तरह से सुनते हैं, ये परीक्षा है। अगर वो सब हो रहा है तो समझ लो कि हमारे जो भोग की वासना है या पाप नष्ट हो रहे हैं, अगर ये अच्छा से हो रहा है तो ये दीक्षा के विषय में। तो और आगे भी प्रभुपाद जी बताते हैं दीक्षा के विषय में, पढ़िए और आगे बहुत ध्यान से पढ़िए, इसमें बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा बताया है। ठीक है, तो पता चल गया ना कि दीक्षा कब ग्रहण कर सकते हैं हम। भगवान जी ने कितना सुंदर व्याख्या किया, हम पूछते हैं कि हमारे दीक्षा कब होगी, आना ग्रहण होगा, केवल इस पर्पट से पढ़िए हमारी क्या योग्यताएं हैं और क्या योग्यताएं होनी चाहिए दीक्षा के लिए। अब प्रभुपाद जी ने बहुत ही छोटे तात्पर्य में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च तमेन च। व्यक्ति को अगर दीक्षा ग्रहण करना ऐसा लगता है कि मुझे दीक्षा ग्रहण करना चाहिए तो उसको तैयार रहना चाहिए ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए और तपस्या करने के लिए तैयार रहना चाहिए और नियमों का पालन करने के लिए एकदम रेडी रहना चाहिए। तो ये दीक्षा ग्रहण करने की ये सब योग्यताएं और भी प्रभुपाद जी बहुत बताए हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये सब जो योग्यताएं को जानना कि ये सब चीजों को, क्योंकि दीक्षा बहुत ही गंभीर विषय है। अगर हम दीक्षा प्राप्त करके अगर जिन विधान और नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हम बहुत अपराध करते हैं, गुरु के प्रति अपराध करते हैं और अपने जीवन को भी नष्ट करते हैं। तो इसलिए दीक्षा ग्रहण करने से पहले हमको सावधान रहना चाहिए। जितने भी विधान है उसको बहुत ही दृढ़ता से, दीक्षा के बाद बहुत ही दृढ़ता से पालन होने चाहिए। तो लोग गुरु का अक्सर गुरु की योग्यताएं जानना चाहिए कि गुरु जानना चाहते हैं लोग कि गुरु ये योग्य है मुझे दीक्षा देने के लिए, ऐसा लोग का विचार होता है कि हम कौन से गुरु से दीक्षा लें। गुरु की योग्यताएं जानने का बहुत प्रयास करते हैं लेकिन अपनी क्या योग्यता है दीक्षा ग्रहण के लिए उसको कोई नहीं जानना चाहता है। हमको अपनी हमारी योग्यता क्या है, शिष्य की क्या योग्यताएं होने चाहिए वो मुझे हमें जानना चाहिए। इसकी क्या योग्यताएं होना चाहिए, गोपाल जी ने बताया श्रीमद भागवत में, तस्मात गुरु प्रकृति लेना जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। ये गुरु की ये शिष्य की योग्यता है, वह गुरु के चरण में जाना चाहिए और जिज्ञासु सदवृत्ति प्रतिपादे न परिप्रश्न सेवया, उसकी सेवा करना चाहिए, उसके प्रश्न पूछना चाहिए जिज्ञासा पूर्वक। ये सब एक शिष्य या एक भक्त की योग्यताएं हैं। तो प्रभा जी बहुत सुंदर इसकी व्याख्या किया, ये छोटे से तर्पण में दीक्षा हमें कब ग्रहण करना चाहिए, जब ये सब सारी चीजें हैं हमारे अंदर तब दीक्षा ग्रहण कर सकते हैं। तो दीक्षा के लिए क्या योग्यता थोड़ा सा घुमा दीजिए, सार के रूप में लिखे हैं। पहला क्या है, कृष्ण भावनामृत में रुचि। दीक्षा के लिए सबसे पहले क्या योग्यता है, कृष्ण भावनामृत है, जो हमारा कृष्ण भावनामृत है इसमें रुचि रहना चाहिए। जो भी विधि विधान है उसको पालन करने में रुचि, जब करने में रुचि, ये सब रहना चाहिए दीक्षा के पहले। और दूसरा क्या है, दीक्षा के लिए तीव्र इच्छा होना चाहिए, तीव्र इच्छा होना चाहिए, किसी के कहने को दीक्षा नहीं ग्रहण करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सब कुछ बताया है, कोई भक्त बोलता है कि हाँ अभी तुम दीक्षा ग्रहण करो, नहीं आप तो हमारी क्या योग्यता है, अंदर क्या विचार चल रहे हैं उसके अनुसार हमें दीक्षा ग्रहण करना चाहिए। हम मार्गदर्शन ले सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं क्या क्या योग्यता, किसी से हम पूछना चाहिए, भक्तों के पास, उत्तम भक्तों के पास जाना चाहिए, तो उनके पास पूछना चाहिए कि दीक्षा ग्रहण करने की क्या क्या योग्यताएं हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, जाकर पूछते हैं कि हमारा दीक्षा कब होगा, लेकिन उनसे पूछना चाहिए कि दीक्षा के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं होनी चाहिए, उसे पूछ के देखना चाहिए कि वो योग्यताएं हमारे अंदर है कि नहीं, नहीं है तो उसको करना चाहिए, पहले योग्यता को लाना चाहिए पहले। तो सबसे पहले कृष्ण भावनामृत में रुचि रहना चाहिए और दीक्षा के लिए तीव्र इच्छा होना चाहिए, किसी के कहने पे नहीं देना चाहिए। मुझे याद है कि बहुत पहले जब मैं दूसरे सेंटर पे था तो वहाँ पे एक भक्त, दो दिन का भक्त था, उसको भक्तों ने दूसरे तीसरे दिन दीक्षा था, उसको भक्तों ने रात भर में इतना रेडी कर दिया और सुबह दीक्षा के लिए बैठा दिया। तो इस प्रकार से कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर दीक्षा ग्रहण करने के बाद वो विधि विधानों का अगर पालन नहीं करेगा तो गुरु के प्रति अपराध करेगा, उससे उसका आध्यात्मिक जीवन धीरे धीरे नष्ट होने लगेगा, उसकी रुचि खत्म हो जाएगी। इसलिए दीक्षा ग्रहण करने पर भक्तों को सावधान रहना चाहिए कि हमारी योग्यता, उसकी योग्यता क्या क्या योग्यता है उसको अपने अंदर पहले लाए दीक्षा से पहले, क्योंकि दीक्षा बहुत गंभीर विषय है। और आगे क्या है, जाति नस्ल रंग का भेदभाव नहीं होना चाहिए दीक्षा में, ये सब नहीं देखा जाता कि क्या जाति है, क्या रंग है, क्या कैसे हम काले हैं या गोरे हैं, ये सब दीक्षा में ये सब योग्यता नहीं है, ये सब का भेदभाव नहीं होना चाहिए। और चौथा क्या है, तपस्या ब्रह्मचर्य एवं मन तथा शरीर पर संयम रखने के लिए तैयार होना चाहिए। कभी मैं दीक्षा ग्रहण करने जा रहा हूँ तो ये सब चीजों तपस्या ब्रह्मचर्य समेन च समेन च तैयार रहना चाहिए। आगे, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इच्छुक होना चाहिए जिज्ञासु, परम सत्य के दिव्य विषय में रुचि रुचि बड़ी क्या है, दिखाना नहीं, रुचि दिखनी चाहिए, दिखाना नहीं हमको, नहीं उसको दिखनी चाहिए, रुचि दिखनी चाहिए हमको, दिखाना नहीं है कि अभी मैं दिखा रहा हूँ दीक्षा के योग्य हो गया हूँ, रुचि लिखनी चाहिए, उसको सुधार कर लीजिए आप, मुझे डाउट था कि गलत लिखेंगे। दिखनी चाहिए, दिखानी और दिखनी में बहुत फर्क है। दिखनी मतलब कि स्वतः वो सब उत्पन्न हो रहा है, और दिखाना मतलब दिखाओ। हाँ, और आगे एकदम तैयार होना चाहिए। गुरु हमें उपदेश दे, जो बोले उसको पालन करने के देता पूर्वक पालन करने के लिए तैयार होना चाहिए। किधर भी गुरु बोले इधर जाओ, ये करो, ये सेवा करो, उसको उस सुखपूर्वक स्वीकार करना चाहिए और पालन करना चाहिए अच्छे से। आगे दिखाओ के लिए कभी भी गुरु को नहीं स्वीकार करना चाहिए। हमारे पास मारुति एक ठगे है, अब मारुति यार बड़ी बड़ी गाड़ी है, ऐसा गुरु गुरु को भी ऐसा नहीं कहना चाहिए हमारे पास गुरु है। कभी नहीं दिखाओ के लिए कभी भी गुरु को स्वीकार नहीं करना चाहिए कि हमने जिद्धा ले लिया, हमने गुरु बना लिया। बहुत ऐसे लोग हैं जो कि गुरु बना लेते हैं लेकिन गुरु के आदेशों का पालन नहीं करते हैं। हमको ये दिखावा मात्र हो गया कि हमने गुरु को स्वीकार किया है, गुरु से दिखाया, गुरु ग्रहण किया है, तो दिखावे के लिए कभी भी गुरु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और भोग दीक्षा ग्रहण करने से पहले भोग में अरुचि रहना चाहिए, अब ये रहेगी तभी हम बाकी नियमों का पालन कर सकेंगे। तो ये दीक्षा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, क्या योग्यता है और दीक्षा क्या है, आज घुमाइए है। तो दीक्षा के लिए अभी हमने योग्यता जाना कि दीक्षा के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, लेकिन ये दीक्षा है क्या, तो क्या है लिखा उसमें, दीक्षा के द्वारा मनुष्य को क्रमशः भोग के प्रति, भौतिक विषय और भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगता है, उसको अच्छा नहीं लगता है, फिर भौतिक जगत की जो भी विषय है और आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि उत्पन्न होता है। जैसे कि ये यहाँ से लिया गया, प्रभुपाद ने एक श्लोक कोट किया है रूप भक्ति संदर्भ से जीव गोस्वामी के, कि दिव्यम ज्ञानम यथो दर्जा कोरिया पापस संख्यम तस्मात निच्छेद सातोक्ता देशी कष्ट को विदे, कि दीक्षा के द्वारा मनुष्य को क्रमशः भोगों के प्रति अरुचि होने लगता है जब दीक्षा हो जाता है। तो जैसे कि चैतन्य में कृष्णनाथ गोस्वामी बहुत सुंदर वर्णन करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने गुरु के पास गए, गुरु के पास जाकर बोले कि हमको वेद और शास्त्रों का ज्ञान दीजिए। तो उनके गुरु जी ने बताया कि तुम्हारे दिमाग में वेद और शास्त्रों का ज्ञान टिकने वाला नहीं है, तुम एक काम करो, ये हरिनाम लो और इसका जप नित्य निरंतर इसका जप करो केवल। तो चैतन्य महाप्रभु ने हरिनाम ग्रहण किया अपने गुरु से और नित्य निरंतर कृष्ण नामों का जप करने लगे, और जैसे जैसे वो जब करने लगे तो उनको भौतिक भोगों के प्रति, संसार और लोगों के प्रति विरक्ति उत्पन्न हो गया, उनको वैराग्य उत्पन्न होने लगा, और जब करते करते उनका मन एकदम पागल सा हो गया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु पागलों की तरह कीर्तन किया करते थे। ये चैतन्य महाप्रभु फिर बताते हैं, उनसे लोग पूछते हैं कि क्या भगवान का भक्ति, भगवान का नाम का जब एक जगह बैठ के करना चाहिए, ये पागलों की तरह क्यों कर, ये अपराध है, क्यों कर रहे होता है। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जब मैं अपने गुरुदेव के पास गया तो गुरुजी ने बताया कि तुम्हारे अंदर वेद और शास्त्र का ज्ञान टिकने वाला नहीं है, तुम हरिनाम का जप नित्य निरंतर करते रहो। तब से मैं हरिनाम का जप निरंतर करता रहता हूँ, और जैसे मैं करने लगा तो मैं पागल जैसा हो गया, भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न होने लगी। ये हरिनाम जप करने का फल अगर हमारा अच्छा हो रहा है तो देख सकते हैं कि भौतिक भोगों के प्रति, भौतिक संबंधियों के प्रति, भौतिक लोगों के प्रति हमारा अरुचि, हमारा जो रुचि है वो कम हो रहा है कि नहीं, ये परीक्षा है कि हम अच्छे से जप कर रहे हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं उन लोग को कि जैसे जैसे मैं उस नाम का जप करने लगा मैं एकदम पागल सा हो गया, बैराग उत्पन्न हो रहा है, पूरा भौतिक भोग के प्रति या भौतिक लोगों के प्रति एकदम बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था उन लोगों का संगति करना। तो जब इस प्रकार से हुआ एकदम मैं पागल जैसा हो गया तो फिर से अपने गुरु जी के पास भाग के गया। तो गुरु जी को हमने बताया कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तारा बल, हे गुरु जी आपने कौन सा न जाने कौन सा मंत्र दे दिया है, कीवा मंत्र दिला गोसाई कीवा तारे बल, उसका न जाने कितना बल है कि जपिते जपिते नाम करे भगन, कि उस नाम का जब से मैं जप करने लगा मैं पागल सा हो गया, भौतिक भोग रुचि खत्म हो गया, तो उस समय चैतन्य महाप्रभु लोग को बताते हैं कि उस समय मेरे गुरुजी ने कहा कि हे चैतन्य, अभी ये हरिनाम तुम्हारे ऊपर अच्छा फल दे रहा है, बस इसे ही जपते रहो। तो चैतन्य महाप्रभु लोग को बताते हैं कि तब से मैं एकदम पागलों की तरह उस हरिनाम का जप करता हूँ। तो जब हम हरिनाम को स्वीकार करते हैं, दीक्षा ग्रहण करते हैं, ये दीक्षा क्या है इसके बारे में हमने बताया कि दीक्षा के बाद मनुष्य को जो हरिनाम जप में एकदम दृढ़ता श्रद्धा है उसको रुचि उत्पन्न होने लगा, जिसके कारण उसका भौतिक भोग के प्रति अरुचि उत्पन्न होती है। और इसके आगे क्या है, दीक्षा के समय भक्त भगवान के प्रति पूर्ण भाव आत्मसमर्पण करता है तो कृष्ण उसे अपने ही समान समझकर स्वीकार कर लेते हैं। दीक्षा काले कृष्ण, दीक्षा काले भक्त करे आत्मसमर्पण, ये श्लोक है। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं कि यूरोप व अमेरिका के धनी परिवार के छात्र है ना, यूरोप और अमेरिका विदेशों में आउट कंट्रियों में कितना लोग भौतिक भोगों के प्रति आसक्त, चार नियमों का नहीं पालन करना, डेली चार लोगों को तोड़ने वाले लोग, ऐसे ऐसे लोग विदेशों में। लेकिन वो लोगों ने भी जब हरिनाम को ग्रहण किया, जब प्रभुपाद जी ने दीक्षा ग्रहण किया, तो उनका भी भौतिक भोग की जो आसना सब कुछ खत्म हो गया। हम देख रहे हैं कि विदेशों में कितने सारे भक्त हैं, क्योंकि वह उत्तम अधिकारी भी हो गए हैं, सन्यासी के पद पे हैं। तो ये दीक्षा है, दीक्षा क्या है जिसमें प्रभुपाद जी ये बताते हैं कि भौतिक भोगों के प्रति रुचि हमारा कम हो जाता है और आध्यात्मिक चीजों के प्रति रुचि बढ़ जाता है दीक्षा के बाद। नहीं, ऐसा सचमुच में अगर हम उसको तीव्रता से रुचि से धन कृष्ण नाम का रुचि से जप नहीं करेंगे, अगर हम उस महामंत्र का जप करते हैं, हम उच्चारण करते हैं, अगर उसको ध्यान पूर्वक नहीं सुनते हैं तो फिर भोग, हाँ नहीं नहीं मान वो करते हैं, लेकिन भौतिक भोग पर भी रुचि बढ़ने लगी, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, कहते हैं कि हम जब करते समय जो भी इच्छाएं करते हैं वो हमें प्राप्त होती हैं। तो अगर जब करते समय अगर हम हरिनाम के ऊपर ध्यान न करें, भौतिक भोग के प्रति करें, तो वो तो प्राप्त होगा ना। तो इसलिए हमको जब जब करना है तो शब्दों के ऊपर सुनना चाहिए, बहुत अच्छा से सुनना, उसका श्रवण करना चाहिए, लेकिन अलग अलग ध्यान अलग अलग जगह पर नहीं लगाना चाहिए जब के समय। बहुत ही सावधान रहना चाहिए जब के समय, हम गलत कुछ विचार किए तो मुस्लिम कहा जाता है कि वो ही जाता है, जबकि समाज अगर हम ऐसा विचार करते हैं तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमको रुचि पूर्वक एकदम ध्यान पूर्वक, भले से थोड़ा स्लो हो लेकिन ध्यान पूर्वक जब करना चाहिए, ठीक है। तो आगे बढ़िए, आगे पढ़िए, कृष्ण के पवित्र नाम हो यहाँ से। पढ़िए पढ़िए, मैं पढ़ूँ? ठीक है, मैं पढ़ूँ, पढ़िए।
आंदोलन में सोलह माला जप करने की संस्कृति करता है। क्योंकि आजकल देशों में लोग माला पर अधिक काल का ध्यान करते हुए एकाग्र नहीं रह सकते, अतः न्यूनतम संख्या में ध्यान करने का निर्धारण किया गया है। किंतु शिविर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहा करते थे कि जब तक कोई कम से कम 64 माला जप न करे तब तक उसे पति माना जाता है। उनकी गणना के अनुसार हम सब पति हैं, पति जैसे हैं, किंतु चूंकि हम परमेश्वर की सेवा में पूरी गंभीरता से करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, अतः हमारे परम पति पार्वती चैतन्य महाप्रभु की विवाह कराता है।
हाँ ठीक है, तो भक्ति सिद्धांत ठाकुर क्या बताते हैं, सब लोग को लखपति होना चाहिए, है ना, लखपति समझ रहे हैं, लखपति जो 1,00,000 नामों का जब डेली करना चाहिए भक्ति, नहीं तो वो पति, भक्ति सिद्धांत ठाकुर के अनुसार पति है, वो अपने आप को पति समझा दे, अगर 1,64,64 माला का जप नहीं हुआ तो अपने आप को पति मानना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बताते हैं कि ये आज के समय में संभव नहीं है, तो इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको 16 माला का जप और 4 नियम का अच्छी तरह से पालन करेंगे तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि निश्चित ही पतित पावन, पतित पावन हेतु सर्व अवतार है, किसका अवतार हुआ, चैतन्य महाप्रभु का, जब हम नित्य 16 माला का जप अच्छे से करेंगे और 4 नियम का पालन करेंगे तो निश्चित रूप से पतित पावन चैतन्य महाप्रभु की कृपा हमारे ऊपर होगी, तो और जब चैतन्य महाप्रभु की कृपा होगा तो हमारा जीवन सफल हो सकता है, प्रभुपाद जी बताते हैं। तो अभी आगे प्रभुपाद जी बताते हैं, अभी वैष्णव, वैष्णव कौन है इसके बारे में प्रभुपाद जी अभी आगे बताएंगे, ये तो वैष्णव कौन है ये विषय बहुत ही गंभीर है, चैतन्य चैतन्य में इसका बहुत सुंदर ढंग से बहुत डिटेल वर्णन है कि वैष्णव कौन है, कैसे हम जाने कि कौन वैष्णव है, इसकी व्याख्या स्वयं चैतन्य महाप्रभु देते हैं, जब कुलिन ग्राम के निवासी सत्यराज खाने लोग आते हैं उनके पास पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु की व्याख्या अलग अलग जगह पे अलग अलग व्याख्या देते हैं कि वैष्णव कौन है, तो अभी आगे पढ़िए। वैष्णव कौन है, प्रभुपाद जी चैतन्य चैतन्य से कोट करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से उनके पास जब से उनके परम भक्त सत्यराज खाना उनके पास आए और पूछे कि वैष्णव कौन है, चैतन्य महाप्रभु ने पहले 3 बार आए सत्यराज खान, पहले साल, दूसरे साल और तीसरे साल, पहले साल जब आए उन्होंने पूछा वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु ने बताया जो उसके मुख से 1 बार कृष्ण का नाम उच्चारण हो गया है वो वैष्णव है, लेकिन वही जब दूसरे साल सत्यराज खान पूछते हैं कि वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिसके मुख से हृदय हरिनाम का कीर्तन निकलता है वो वैष्णव है, और तीसरे साल फिर से सत्यराज खान आए और पूछे वैष्णव कौन है, तो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि जिसके देखने मात्र से कृष्ण का उच्चारण स्वतः हो जाए वो वैष्णव है, ये 3 व्याख्या देते हैं चैतन्य महाप्रभु। तो वैष्णव की अधिक व्याख्या क्या हमारी है? हाँ, तो वैष्णव की अधिक अभिरुचि क्या लिखा उधर? अभिरुचि हाँ नहीं उसको सुधार कर लीजिए। तो जो एक बार भी कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए। किसमें श्रेष्ठ मानना चाहिए? जो लोग कृष्ण का नाम नहीं लेते हैं उसमें श्रेष्ठ मानना चाहिए उसको, समझ गया ना? जो एक बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है उसे श्रेष्ठ मानना चाहिए, उसे वैष्णव मानना चाहिए, श्रेष्ठ मानना चाहिए। किसमें? जो लोग नहीं लेते हैं उन व्यक्तियों में से उसको श्रेष्ठ मानना चाहिए, और जो लोग लेते हैं उसमें से श्रेष्ठ नहीं मानना चाहिए। जो लोग नहीं लेते हैं उसमें से वो श्रेष्ठ है क्योंकि उसने एक बार कृष्ण का नाम लिया। और आगे, जो कृष्ण नाम के कीर्तन में अभिरुचि रखता है और उसका अभ्यास करना पसंद करता है उसे वैष्णव मानकर कम से कम मन से सम्मान करना चाहिए। और निष्कर्ष यह निकला कि जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रयास कर रहा है उसका सम्मान वैष्णव का धर्म है। जो व्यक्ति पवित्र नाम का नियमित कीर्तन करता है या प्रयास करता है उसको हर वैष्णव को हमारा कर्तव्य उसको उसको सम्मान दे। जैसे प्रभुपाद जी ने एक व्यक्ति का उदाहरण बताया कि वो हमारे पास आए, वो धीरे धीरे रुचि दिखाने लगे इस भक्ति मार्ग में और अपने ऑफिस में भी उन्होंने कृष्ण के फोटो वगैरह इत्यादि सब रख दिए, तो उनको सम्मान देना चाहिए। जैसे हम बाहर जाते हैं लाइफ नंबर वगैरह के इधर उनको देते हैं, उनको भी सम्मान देना चाहिए क्योंकि उन्होंने कृष्ण को ग्रहण किया, अपने घर में रखा है, ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मान देना चाहिए। और आगे आगे पढ़िए, अभी पढ़िए आगे पढ़िए। हाँ एक मिनट, एक मिनट, यहाँ पे श्रद्धा की बात करते हैं प्रभा जी। इससे पहले हम पहले मध्यम अधिकारी की चर्चा करते हैं जो प्रभा जी आगे बताते हैं, उसके बाद श्रद्धा की चर्चा करेंगे। तो आगे आप जहाँ पे श्रद्धावान जन है थोड़ा सा एक पैराग्राफ आगे रहे घुमाइए। हाँ हाँ नहीं श्रद्धा जन है या भक्ति अधिकारी यहाँ से पढ़िए, थोड़ा घुमाइए एक एक पैराग्राफ आगे बढ़िए।
हम किसी कृत्रिम साधन से कोई कृत्रिम भगवान की अनुभूति प्राप्त नहीं कर सकते, हमें सदा भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए।
ठीक है, ये श्रद्धा की परिभाषा है। अभी हमने श्रद्धा की चर्चा किया ना, तो ये श्रद्धा की परिभाषा है, कौन कनिष्ठ है, कौन मध्यम है, कौन उत्तम है, ये कैसे पता चलेगा किसकी कितनी श्रद्धा है। तो श्रद्धा की परिभाषा देते हुए प्रभुपाद जी चैतन्य चरितमृत से श्लोक कोट करते हैं कि श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चया कृष्ण भक्ति केला सर्व कर्म कृत है। कि ये श्रद्धा होना चाहिए कि कृष्ण भक्ति करने से सारे कार्य, सारे आनुषंगिक कार्य सब अपने आप स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। इस प्रकार की श्रद्धा होना चाहिए हर भक्त को। जब ऐसी श्रद्धा रहेगी तभी हम आगे प्रगति कर सकते हैं। इसलिए कनिष्ठ अधिकारी को कोमल श्रद्धा कहा गया है, और मध्यम अधिकारी से उससे थोड़ा ज्यादा श्रद्धा, और उत्तम अधिकारी को जो कि काफी श्रद्धा रहता है, भगवान के प्रति एकदम समर्पित भाव रहता है उसका, इस श्रद्धा के अनुसार ये तीनों विभाजन श्रद्धा के अनुसार हुआ है किसकी कितनी श्रद्धा है। तो श्रद्धा की यहाँ प्रभुपाद जी ने परिभाषा दिया, तो कृष्ण की दिव्य सेवा करके मनुष्य सारे आनुषंगिक कार्य संपन्न करता है, यह दृढ़ विश्वास जो भक्ति करते रहने के अनुकूल होता है श्रद्धा कहलाता है, ये श्रद्धा की परिभाषा है। तो ऐसा विश्वास होना चाहिए कि हम कृष्ण भक्ति कर रहे हैं तो बाकी सारे कर्म अपने आप हो जाएंगे। और जैसे कि प्रभुपाद जी ने यहाँ बताया कि भगवद्गीता के एक भाग को स्वीकार करना और दूसरे भाग को नहीं स्वीकार करना, जैसे अर्ध कुकुट न्याय कहते हैं कि जानते ना अर्ध कुकुट न्याय क्या बोलते हैं, मुर्गी को बोलते हैं ना, उसके आधे भाग को स्वीकार करना, आधे भाग को नहीं स्वीकार करना, आगे वाले भाग को स्वीकार करना, आगे वाले भाग को नहीं स्वीकार करना, जिससे वो कुछ उसको खिलाना पड़ता है लेकिन वो पीछे भाग से वो अंडे देती है, तो ये उसको नहीं स्वीकार, एक अर्धकुटित न्याय बोलते हैं, तो हमारे लिए घातक हो सकता है। हमको भगवद्गीता के उद्देश्यों को पूर्णतः स्वीकार करना चाहिए, पूर्ण रूप से जैसा है वैसा स्वीकार करना चाहिए। विशेष करके प्रभुपाद जी बताते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो ठीक है, श्रद्धा का सार चार्ट खुले खुला है, हाँ ये सार है श्रद्धा का सार, जिसमें पहला क्या है, मनुष्य श्रद्धा के विकास के अनुसार भक्ति में कनिष्ठ मध्यम तथा उत्तम कहलाता है। और प्रभुपाद जी चेतन चेतन से कहते हैं ये सार है इस पत्र का। और दूसरा श्रद्धा का अर्थ है वह दृढ़ विश्वास कि कृष्ण की दिव्य सेवा करके सारे आनुषंगिक कार्य पूरा संस्कार संपन्न होते हैं, और चेतन चेतन से प्रभुपाद जी समान देते हैं। और तीसरा श्रद्धा का अर्थ है भगवद्गीता के आदेशों को पूर्ण रूप से स्वीकार करना बिना किसी विवेचन के, बिना किसी तर्क के, विशेष रूप से सर्वधर्मान परिचर्य को, और इस अंतिम उद्देश्य को स्वीकार करना। आगे जब इस प्रकार से हम पूर्णतः श्रद्धावान बन जाते हैं तो यह दृढ़ विश्वास आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए आधारभूत बन जाती है। इस प्रकार की श्रद्धा जब हमारी हो जाएगी तो, और आगे जब तक मनुष्य श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन नहीं करता तब तक कृष्ण प्रकट नहीं होते उसके सामने। ये आगे हम पढ़ेंगे आगे के तात्पर्य में, लेकिन हमने पहले लिख दिया इसको। जब तक हम श्रद्धा पूर्वक हरे कृष्ण महामंत्र का जप नहीं करेंगे तब तक हमारे सामने कृष्ण प्रकट नहीं होते। कृष्ण को प्रकट करना है अपने सामने तो क्या करना पड़ेगा, श्रद्धा पूर्वक हरिनाम का जप करना पड़ेगा। ठीक है, तो आगे अभी प्रभुपाद जी, हाँ थोड़ा हमने पीछे कुछ छोड़ दिया था ना, जो सनातन गोस्वामी बाद कुछ युक्ति था तो वो छोड़ दिया था, उसको पढ़ लेते हैं, थोड़ा पीछे जाइए थोड़ा सा। मध्यम अधिकारी की अधिक व्याख्या देते हैं सनातन गोस्वामी के पास, क्या है पढ़िए थोड़ा। बस हो गया। तो सनातन गोस्वामी पास मध्यम अधिकारी की अधिक व्याख्या देते हैं। क्या देते हैं? शास्त्र संबंधित ज्ञान पुष्ट नहीं है, शास्त्र युक्ति ना ही जाने, और आगे फिर भी श्रद्धावान है और उसे हरिनाम कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा है। ये जहाँ पे हमने त्रिविध तीन वैष्णव के लक्षण बताए उसके नीचे भी लिख सकते हैं। ये मध्यम अधिकारी के जहाँ पे कालम बनाया होगा उसके नीचे भी लिख सकते हैं, नहीं तो अलग से भी लिख सकते हैं। मध्यम अधिकारी जहाँ पे हमने चर्चा किया था ना कि मध्यम अधिकारी के और कनिष्ठ अधिकारी उत्तम अधिकारी के क्या लक्षण होते हैं, दीक्षा प्राप्त किया रहता है, तो मध्यम अधिकारी के नीचे भी इसको लिख सकते हैं। इसको और अधिक व्याख्या देते हैं। फिर भी श्रद्धा और उसे हरिनाम कीर्तन में दृढ़ श्रद्धा है, नियत भक्ति में सेवा के संपादन में दृढ़ है और भक्ति के भावी प्रगति का पात्र है। ये मध्यम अधिकारी का अधिक व्याख्या है, ठीक है। और आगे उत्तम अधिकारी के भी थोड़ा अधिक व्याख्या देते हैं, खत्म कर देंगे आज हम लोग, थोड़ा से और है, एक पैराग्राफ और पढ़ करेंगे। तो ठीक है, पढ़िए और आगे। अधिक व्याख्या तो पहले और देते हैं, तो उस उत्तम अधिकारी के भी कालम में इसको लिख सकते हैं। तो खत्म कर देंगे बाद में, लिख लीजिए प्रोग्राम कर देंगे। अच्छा उत्तम, हाँ उसमें उसी में उत्तम अधिकारी से अधिक व्याख्या नीचे है। भगवान की सेवा में गंभीरता से संलग्न होकर सेवा करते हैं उत्तम अधिकारी, और जप माला का नियत संख्या में जप करते हैं, जप माला में, और सदैव कृष्ण भावना में इसका विकास हो ऐसा विचार करते हैं। सदैव कृष्ण भावना में इसका विकास हो, किस तरह से भक्तों की संख्या बढ़े और किस तरह से जो प्रचार है बहुत तेजी से फैले, ये उत्तम अधिकारी के सोच होता है, ऐसा विचार होता है उनका। और अपने आप को कृष्ण के सनातन सेवक के रूप में मानते हैं कि हम अभी कृष्ण के सनातन सेवा है, और किसी का सेवा हम नहीं करेंगे, केवल कृष्ण का। ऐसे उत्तम अधिकारी को गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए, प्रभुपाद जी बताते हैं, ठीक है। अभी आगे निष्कर्ष, निष्कर्ष पूरे छात्र का निष्कर्ष प्रभुपाद जी देंगे और समाप्त करेंगे, ठीक है। पढ़िए फिर। श्लोक में रूप गोस्वामी भक्त को कम से कम इतना बुद्धिमान बनने का तो बताते हैं कि इतना बुद्धिमान तो बन ही जाना चाहिए ये श्लोक पढ़कर, कि कम से कम कनिष्ठ मध्यम और उत्तम में ये तीनों की स्थिति जान ले, इनके क्या लक्षण होते हैं, इनमें भेद करके ये तो जान लेना चाहिए हर हर भक्त को, इतना तो कम से कम भेद करना, इतना बुद्धिमान बन जाना चाहिए इस श्लोक पढ़कर, ठीक है। और आगे बढ़िए। बस हो गया, आप पढ़िए।
उसको
करना चाहिए कि उसे अपर्याप्त मार्गदर्शन में ऐसे से जीवन में चलन न सके और उनसे प्रगति नहीं कर सके। अतः शिष्य को सतर्क रहना चाहिए कि गुरु के रूप में उत्तम अधिकारी को ही स्वीकार करें।
ठीक है, तो ठीक है, हम पांचवा श्लोक समाप्त हो गया हमारा, और इसके बाद शायद आप लोग का एग्जाम भी है ना। पांच ही श्लोक के बाद एग्जाम है ना, पांच हो गया पूरा, अभी शायद एग्जाम अभी देखिए। देखिए अभी कैसे करते खास कर तो। वैसे तो उपदेशा में कोई बहुत बड़ा ग्रंथ नहीं, इसका एक साथ में भी एग्जाम हो सकता है। ठीक है जब उनको बोलिए कितना बार एग्जाम लेना है। ठीक है, जैसा उनको बोलिए और जैसा लेंगे वैसा देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम का सारा देखभाल वही कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम अगले संडे से छठे श्लोक का पढ़ेंगे। और सर छठे श्लोक का जो उस प्रकार की अप्राकृत वैष्णव प्राकृत दृष्टि निषेध कि प्राकृत ये चर्चा है छठे श्लोक का कि प्राकृत अप्राकृत वैष्णव जो वैष्णव होता है वो इस भौतिक जगत का नहीं होता है, वो अप्राकृत आध्यात्मिक जगत का होता है और उसके उसको प्राकृतिक दृष्टि से भौतिक दृष्टि से देखना निषिद्ध है। ये विषय है छठे श्लोक का। ठीक है, तो हम खत्म करेंगे अभी। प्रभुपाद की हाँ, वैष्णव का भी सामने किया ना, वैष्णव की जो एक बार कृष्ण का नाम उसके मुंह से निकल गया उसे वैष्णव कहते हैं। वैष्णव भी अलग अलग पद के होते हैं, जैसे कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी और उत्तम अधिकारी। उनके लक्षण अलग अलग होते हैं, उनके उनका आचरण मेरी अलग अलग होते हैं, आचरण उनका। उनकी जो कनिष्ठ अधिकारी उनके श्रद्धा कोमल रहती है, और मध्यम अधिकारी अभी हमने चर्चा किया ना, उसका पूरा चार्ट भी सार रूप में भी दिया हूँ, तो उसको देख लीजिए समझ में आ जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। समझ में आ रहा है कि नहीं, सबको समझ में आ रहा है?